अगर कहेंगे भी हम कि इन लोगों की वजह से ये लोग थे ना, ये जान नहीं छोड़ते थे हमारे, ये हमें जीने नहीं देते थे, तो क्या फायदा होगा इसका? क्या इसकी वजह से हमें कोई कमी हो जाएगी, हमें हमारी सजा कम हो जाएगी? नहीं, जो जुर्म अगर हम किसी को देख कर जुर्म करते हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में आके जुर्म करते हैं, किसी की वजह से कोई गुनाह करते हैं, तो आज उस गुनाह को छोड़ दें, इसलिए कि वो जिसकी वजह से हम कर रहे हैं, हमारी बचत नहीं हो जाएगी उसकी वजह से। अल्लाह इनकी वजह से, इनकी वजह से हमने किया। देखें यहाँ पे इनकी फरियाद, अल्लाह इनको डबल डबल दे। अब इसमें गुस्सा भी है, इसमें गम भी है, इसमें एक मायूसी भी है कि अब हम तो नहीं निकल सकते, अब क्या हम कर सकते। अब यही है कि अभी इनको तू इतनी सजा दे, इतनी इनके ऊपर लानत कर, लानत बड़ी, कि इनके ऊपर कोई अल्लाह की रहमत कभी भी ना हो, ये दुआएं कर रहे हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अल्लाह तजालना मिनहुम, अल्लाह इनमें से हमें शामिल ना करना। अल्लाह हमें अपनी इताअत और अपने रसूल की इताअत की तौफीक अता फरमा। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जालिम उस दिन अपने दोनों हाथ काटेगा, जैसे इंसान हसरत से जैसे अपने हाथों को काटने लगता है ना, ये आप ये अपने नकल्स को ऐसे मुंह में डाल लेते हैं जब कोई ऐसी बात होती है बहुत हसरत की कि वो ये क्या हो गया, उस दिन जालिम अपने हाथों को कटेगा, कहेगा काश मैंने रसूल का रास्ता इख्तियार किया होता, ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन आप तो बेड़ा गर्क हो चुका, तो कोई फायदा नहीं होगा। इतनी खुली आयतें हैं हमारे सामने, कितनी खुली आयतें हैं। अल्लाह हम कैसे लोग हैं कि जो आपको नहीं, मैं कह रही, मैं अपने आप को कह रही हूँ कि देखो इतनी दफा पढ़ के सब करके उस तरह नहीं हमारा अमल बदला जैसे कि होना चाहिए। अल्लाह तूने तो आके तूने हुज्जत तमाम कर दी, तूने हमें वो बता दिया जो कि वहां पे होने वाला। अल्लाह हमें तौफीक दे हम इस कुरान की मुताबिक अमल कर सके, कि हम भूल जाते हैं, हम गाफिल हो जाते हैं। अल्लाह जब हम गिर जाएं तो तू हमें थाम लेना, अल्लाह हमें इस अंजाम तक ना पहुंचाना, तू हमें बचा लेना। यायुल्लदीना आमनु, ए ईमान वालो, ला तकूनु कल्लदीना आज़ो, उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अज़ियतें दी, किसको? मूसा अलैहिस्सलाम को। ए लोगो उनकी तरह, ए ईमान वालो उनकी तरह ना हो जाना जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को अज़ियतें दी। कौन लोग थे जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को अज़ियतें दी? उनकी कौम बनी इसराइल, उनकी कौम ने उनको बड़ी अजियतें दी, बड़ा उनको तंग किया। क्या क्या तंग किया था आपने, ये खास इसका कॉन्टेक्स्ट तो हम अभी देखते हैं, लेकिन वैसे आपने सूरह बकरा में कितना कुछ पढ़ा है कि कितनी तरह से, कभी जब उनको बकरा को गाय को ज़िबा करने का हुक्म दिया गया तो कितनी तावीलें, कितने सवालात, कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे, कभी किसी तरह तंग करते थे, कभी कहते थे हमें ये नहीं चाहिए मनोसलवा, हमें प्याज और लहसुन और ये चाहिए, और कभी बस तरह तरह की उनकी अजियतें थी जिनसे वो मूसा अलैहिस्सलाम को तंग करते रहते थे। और खास तौर पे इस जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तफसीर में फरमाया कि ये बनु इसराइल जो थे वो बरहना नहाया करते थे, बिल्कुल नंगे होके नहाते थे, एक दूसरे की तरफ देखते भी रहते थे, यानी एक दूसरे को नंगा देखते थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो बड़े ही हया वाले थे, वो अकेले में नहाते थे। तो बनु इसराइल आपस में कहने लगे, ये मूसा जो है जो हमारे साथ मिलके नहाता नहीं ना, वो हमाम होते थे वहां पे, उसमें लोग नहाते थे या तालाब वगैरह में जाके नहाते थे, या तो ये जो हमारे साथ नहाता नहीं, इसकी जरूर कोई वजह है, या तो इसमें कोई जिस्मानी ऐब है, या इसको बर्फ की बीमारी है, या कुछ इस तरह है। तो एक दफा मूसा अलैहिस्सलाम गुसल करने गए और अपने कपड़े उतार के एक पत्थर पे रख लिए, वो पत्थर आपके जब वो निकले ना तो वो पत्थर आपके कपड़े लेके भाग गया, मूसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे पीछे दौड़े, ऐ पत्थर मेरे कपड़े दो, ऐ पत्थर मेरे कपड़े दो, हत्ता के बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम को देख लिया, वो पत्थर जाके रुक गया, उनके एक एक ग्रुप के ग्रुप में खड़े हुए थे वो लोग, उनके सामने जाके वो पत्थर रुक गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम पीछे पहुंचे और उन्होंने कहा फिर कि अल्लाह की कसम मूसा में तो कोई जिस्मानी ऐब नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर से अपने कपड़े ले लिए और इस पत्थर पर लाठी से जरब लगाई, गुस्से के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम जरा गुस्से के भी तेज थे, तो उन्होंने अपनी लाठी, उनके पास थी लाठी, लेके दौड़ रहे थे इसके पीछे, तो उसके ऊपर जरबे लगाए। और अबू हुरैरा ने कसम खा के कहा कि इस पत्थर पर मूसा अलैहिस्सलाम की जरब से कई निशानात पड़ गए। ये बुखारी और मुस्लिम में रिवायत है, इससे पता चलता है ये भी मूसा अलैहिस्सलाम का एक मौजा था कि उनकी छड़ी से मारने से ही पत्थर पे जरबे पड़ गई थी। तो ए ईमान वालो, तुम अपने नबी को ऐसे ना सताना जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने सताया, मूसा अलैहिस्सलाम को सताया गया, जैसे बनी इसराइल ने सताया। समझाई बात? कि ईमान वालो, ए मुसलमानों, ए ईमान के दावे करने वालों, तुम मत इस तरह से हरकतें करना जैसे उन्होंने की थी अपने नबी के साथ। ये बात समझ आई? इसके बावजूद आज ऐसे नाहंजार लोग हैं जो अपने नबी के ऊपर ही बातें करते हैं, कभी उनकी शादियों पे बातें करते हैं, कभी उनके हाल हुलिये पे बातें करते हैं, कभी उनके और तरीकों पे बातें करते हैं, कभी इतराजात करते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया तुम मत हो जाना उनकी तरह जिन्होंने अजियत दी। अजियत ही देना? क्या आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुन रहे हो बातें तो खुश होंगे क्या इस तरह की बातें सुन के? उन्होंने तो एक छोटी बच्ची के साथ शादी कर ली, उन्होंने तो ऐसे कर, कितनी बुरी बातें हैं जो अपने मुंह से ये निकालते हैं। और इनको शर्म नहीं आती कि ये उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं और ये बातें कर रहे हैं। और इतनी तराजात की लिस्ट है इनके पास जो खत्म ही नहीं होके देती। उन्होंने ऐसे क्यों किया? हंसते ही उनके वाले हुलिये के ऊपर। तो मत अजियत दो देना उस तरह अपने नबी को जैसे बनी इसराइल ने दी। लेकिन वाकई ये उम्मत भी उसी तरह उनके नक्शे कदम पे चलेगी पिछली कौमों के, जैसे एक पैर एक जूता दूसरे जूते के जैसा होता है, उस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उम्मत भी, मुसलमान उम्मत, ये भी इसी तरह उनको फॉलो करेगी, बिल्कुल उनके पीछे पीछे चलेगी। वाकई आज वही इन्होंने भी अपने नबी के साथ वही तरीके शुरू कर दिए। और उस जमाने में ऐसे हुआ था, मुनाफिकीन तो थे, वो तो अजियत देते ही रहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत देना है, जब आप उनके लाइफस्टाइल पे इतराजात करते हैं ना, ये अजियत देना ही है उनको। हमने पहले पढ़ा है उसमें जिस आयत में 57 के अंदर कि जो अल्लाह और उसके रसूल को अजियत देता है उसके ऊपर लानत है अल्लाह की दुनिया और आखरत के अंदर। ये बातें मामूली नहीं होती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई बात लगा देना और ऐसे उनको समझना जैसे कि हम अपने आपस में एक दूसरे को समझ रहे हैं, या हम किसी सियासतदान के ऊपर कोई इतराज कर रहे हैं या उसका कोई बात कर रहे हैं, तो हम इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करें फ्री फॉर ऑल के जो मर्जी कुछ भी कहता रहे। इतनी ये सेंसिटिव बात है कि जिसने अजियत दी उनको, यानी आप ये सोचें कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुन ले तो उनको इससे तकलीफ पहुंचेगी, अगर उनके सहाबा को कोई बात हमने कह दी तब भी तकलीफ पहुंचेगी ना, अगर उनकी अजवाज मुतहरात को कोई बात कह दी तो तब भी तकलीफ पहुंचेगी ना उनको। अगर उनको इससे तकलीफ पहुंची तो हमारी तो दुनिया और आखरत लुट गई, क्योंकि दुनिया की भी लानत और आखरत की भी लानत है ऐसे बंदे के लिए जो उनको अजियत देता है। इस आयत में आ गया, तो ये मुंह से निकालने से पहले कोई बात लाख दफा सोचे, जब अल्लाह के ऊपर कोई बात कहनी हो या उसके रसूल के ऊपर कोई बात कहनी हो। अल्लाह ताला कहां, अल्लाह की जात, और हम इतनी अजीबोगरीब बातें अल्लाह ताला के अहकामात के बारे में कह देते हैं, अल्लाह की जन्नत और जहन्नम के बारे में लतीफे कहते हैं और हंसते हैं, हूरों के ऊपर लतीफे कहते हैं। ठीक है, हम सोचते हैं वो हूरों पे हम कह रहे हैं या हम जन्नत जहन्नम पे कह रहे हैं तो लतीफे कहना ठीक है, वो अल्लाह की बनाई हुई बातें हैं, अल्लाह की बताई हुई बातें, उनके ऊपर लतीफे बनाना, कभी कहना वो तो अल्लाह मियां की गाय है, क्यों ऐसी बातें कहते हो? जो बात अल्लाह की शान के लायक नहीं है वो बातें मत कहो। अल्लाह को अजियत देने का मतलब कि अल्लाह को अजियत देना ऐसे नहीं होता कि हम कोई अल्लाह को अजियत दे सकते, नहीं, अल्लाह की शान बहुत बुलंद है। अल्लाह को अजियत देना क्या है? उसको अनॉय करना, उसको नाराज करना। हम नाराज करते हैं इस तरह की बातें कह के, बाज दफा जो अपने मुंह से निकालते हैं समझ ही नहीं होती। इतनी ये जो जिन्होंने भी ये मुहावरे बनाए हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे वो अल्लाह मियां के पिछवाड़े में, ये किस किस्म के मुहावरे हैं, किस किस्म की बातें हैं? आप सोचो तो सही, आप किसकी बात कर रहे हैं? तो बहुत केयरफुल रहना चाहिए। देखिए, दुनिया और आखिरत खत्म हो सकती, तबाह हो सकती है एक बात मुंह से निकालने से। आप इससे अंदाजा लगाएं, अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, चाहे तब आपको उससे ज्यादा समझ आएगी कि वो थे इमाम अबू यूसुफ जो थे, वो बहुत बड़े यानी मुहद्दिस भी हैं, बहुत बड़े काजी काजी भी हैं अपने जमाने के। तो वो अपनी मजलिस में बैठकर मतलब बयान कर रहे थे, अहादीस बयान कर रहे थे, तो बहुत लोग इल्म उनसे हासिल करने के लिए आते थे, बहुत बड़े यानी स्कॉलर हैं, काजी अल कुज़्ज़ा उनको कहा जाता है, यानी काजियों के भी काजी, तो हारून अल रशीद ने उनको काजी बनाया हुआ था। तो वो ऐसे सुन्नतों का जैसे जिक्र कर रहे हैं, हदीस का जिक्र कर रहे हैं, तो उन्होंने सुन्नत बयान की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना कद्दू स्क्वाश जो होता है, पंपकिन जो होता है, ये बड़ा पसंद था। एक आदमी खड़ा हुआ कहने लगा मुझे तो कोई पसंद नहीं है कद्दू, तो उन्होंने उसको फौरी तौर पर जेल भिजवा दिया। फरमाने लगे तुम ये नहीं कह सकते हो, यानी ये बात नहीं कि कोई पसंद या नापसंद नहीं कर सकता, पसंद आपको आपको हो सकता है, कोई चीज पसंद हो नहीं हो ये आपकी अपनी चॉइस हो सकती, लेकिन तुमने ऐसी बात की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अजियत देना है, या तुमने ऐसी बात की जो उनको पसंद है, तुम उठ के खड़े होकर जुर्रत से कह रहे हो मुझे नहीं पसंद, और एक आदमी को उनके साथ जेल में रख दिया, ये इसको वॉच करो, क्या इसके मुंह से जो निकली हुई बात थी वो ऐसे ही मतलब एक जस्ट ऐसे निकल गई थी, या वाकई ये मुर्तद हो गया हुआ। बाद में पता चला कि नहीं, ऐसे इसके मुंह से ऐसी गलती से निकल गई थी, तो उसको आजाद किया फिर। यानी इतनी इतनी बातों के ऊपर, यानी और ये मैं कोई छोटे आदमी नहीं, काजी अबू यूसुफ बहुत बड़े मुहद्दिस थे, तो उनकी बात बता रही। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास, आपकी चाल ढाल, आपकी बात, आपका हाल हुलिया, आपकी कोई शादी, आपके कोई तरीका, उसके ऊपर इतराज कर देना, मैं और आप क्या चीज है, उसके ऊपर कोई बातें बनाना, उसको हकीर समझना, उसको यानी बिलिटल करना, सोच लें कि फिर अगर कोई ऐसा करता है, इवन गलती से भी अगर ऐसा करता है, या उसके जोक बनाना, फन करना, मजाक कर रहे हैं हम, तो सोच लें हम क्या जुर्रत कर रहे हैं, सोच लें फिर। ये इस आयत को, आयत 57 को पढ़ने के बाद हमें सोचना चाहिए कि हम किस उस कितनी डेंजरस चीज कर रहे हैं, ये ना हो कि हमें पता भी ना चले और जुबान से कुछ ऐसा निकल जाए कि दुनिया और आखरत खराब हो जाए। और अद्दा लहुम अज़ाब मुहीना है, एहतियात करें कुछ बोलने से पहले, जब अल्लाह की बात आ जाए, रसूल की बात आ जाए, फिर अपनी जुबानों को बंद कर लें, बहुत सोच समझ के बोलें, बहुत सोच समझ के। हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पे कि अजियत देना, कि अजियत मत दो अपने रसूल को, जैसे उन्होंने अजियत दी मूसा अलैहिस्सलाम को। अब जैसे नाते पढ़ने में हम झूमते तो बहुत रहेंगे, लेकिन साथ साथ अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में हमें इतराजात हैं, तो अजियत देना नहीं है क्या ये? फबरअहुल्लाह, अल्लाह ने तो उनको बरात कर दिया। जैसे बरात कैसे किया, मैंने जैसे आपको बताया, वो पत्थर भाग पड़ा और मूसा अलैहि सलाम की बरात हो गई, यानी उन्होंने जो निजाम लगाया था उससे वो बरी उज़मा हो गए, पता चल गया कि ये ऐसे नहीं। तो उनका यहाँ पे कसूर क्या था, उन्होंने इल्जाम लगाया मूसा अलैहि सलाम के ऊपर, नहीं? और आज जो लोग करते हैं वो भी इल्जाम लगाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात भी ऐब है, और उस जात के ऊपर इल्जाम लगाना। फबरअहुल्लाहु मिम्मा कालू, उससे जो उन्होंने कहा था उससे अल्लाह ताला ने उनको बरी जिम्मा कर दिया, इसलिए कि वो सिर्फ हया की वजह से अकेले नहाते थे, कोई ऐसा ऐब उनके अंदर नहीं था। और हया एक पसंदीदा चीज है, और हया सिर्फ औरत के लिए नहीं होती, औरत हम सोचते ना औरतों को हया करनी चाहिए, आदमी इस चीज को बुरा समझते हैं कि हम हया करें, हम क्यों हया करें, मर्द को तो हया करनी ही नहीं चाहिए, वो तो शर्म करता है, शर्म तो औरतें करती हैं, लड़कियां करती हैं, किसी को बच्चा शर्म कर रहा हो ना तो उसके ऊपर भी इतराज करने लगते हैं, हालांकि हया जो है ना उसमें सरासर खैर है, हया ईमान का जुज है। तो आदमी मर्द को भी हया करनी चाहिए, उसके अंदर भी हया होनी चाहिए, औरतों के अंदर भी हया होनी चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुंवारी लड़की से भी ज्यादा बाहया थे। सुभान अल्लाह, इतनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हया थी। हज़रत उस्मान के बारे में भी आता है कि बड़े हया वाले थे। तो उस जमाने में, अच्छा और एक वाकया बता दूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में क्या हुआ था कि जंगे हुनैन जब हुई थी तो उसमें माले गनीमत की तकसीम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ मुसलमानों को तरजीह दी, यानी जैसे कोई नए नए मुसलमान हुए हैं या कोई कुछ है तो आपने एक बंदे को 100 ऊँट दे दिए, आयना को आपने और इसी तरह इतने ऊँट दे दिया, और अरब के दीगर सरदारों को भी आपने ज्यादा दे दिया। तो एक आदमी खड़ा हो गया, उसने कहा अल्लाह की कसम इस तकसीम में कोई इंसाफ नहीं किया गया और ना इससे अल्लाह की रजा का इरादा किया गया। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मैंने कहा अल्लाह की कसम, मैंने दिल में कहा अल्लाह की कसम मैं जरूर इस बात की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दूंगा। तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दे दी कि इस आदमी ने ऐसा कहा। तो आपका चेहरा मुतगैर हो गया, मतलब रंग बदल गया। आपने फरमाया जब अल्लाह और उसका रसूल अदल नहीं करेगा तो और कौन अदल करेगा। फिर आपने फरमाया अल्लाह मूसा अलैहि सलाम पे रहम फरमाए, उनको इससे भी ज्यादा अज़ियत दी गई तो उन्होंने सब्र किया। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूसा अलैहि सलाम का जिक्र फरमाया था कि ये तो मुझे इस तरह की बात सुना रहे हैं, लेकिन मूसा अलैहि सलाम को तो बनी इसराइल ने इससे भी ज्यादा तकलीफें दी थी लेकिन उन्होंने सब्र किया था। तो इससे हमें पता चलता है कि जो दीन का काम कर रहा होता है ना उस पे लोग इल्जाम भी लगाएंगे, उसके ऊपर लोग कीचड़ भी उछालेंगे, उसके ऊपर लोग ऐसी ऐसी बातें भी कह देंगे कि वो इंसान तिलमिला उठता है कि ये क्या बातें बना रहे हैं, ये क्यों ऐसी बातें बना रहे हैं। लेकिन उस वक्त भी सब्र करना। हमने आप देखें पीछे ये भी आयत पढ़ ली है ना कि ये 58 आयत के अंदर हमने पढ़ा है कि जो मोमिनों को तकलीफ देते हैं बगैर उनके किसी कसूर के, अजियत देते हैं, उन्होंने बड़ा बुहतान उठाया, बड़ा गुनाह, खुला गुनाह उठाया अपने सर के ऊपर। कि एक बात कही जाती है यजीद बिन शजरा कहते हैं कि जहन्नुम में कुएं हैं, ठीक है, और कुओं में समुन्दर के साहिल की तरह के साहिल हैं। क्या है? जहन्नुम में कुएं हैं, जहन्नुम, जहन्नुम के अंदर भी कुएं हैं, वो भी कुएं आग के ही होंगे, अल्लाहु आलम। और हर कुएं में जैसे समंदर, ये बीच होता है ना, इस तरह बीच है, और उनमें कीड़े मकौड़े हैं और वक्ती ऊंट की तरह के सांप हैं, यानी जितने ऊंट बड़े होते हैं ना इतने बड़े बड़े सांप हैं उसमें, और स्याह खच्चरों की तरह के, ब्लैक बिल्कुल जैसे पोनीज होते हैं उनके बराबर के बिच्छू हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी। ये कीड़े मकौड़े जहन्नमियों को होंठों और पहलुओं से पकड़ लेंगे, होंठों से और पहलुओं से। दूर से भी अगर सांप या कोई बिच्छू नजर आ जाए तो हमारी जान निकल जाती है। कहां सांप ऊंटों के बराबर, कोबरा सांप को सोच लें, और स्याह खच्चों के बराबर बिच्छू, और इनको यहां से पकड़ लेंगे और वो आदमी का हाल ये हो जाएगा कि उनमें से एक ऐसे खुजाएगा अपने आप को, इतना खुजाएगा, इतना खुजाएगा उसकी, उसकी यानी जिस्म के अंदर खारिश शुरू हो जाएगी, इतनी खारिश होगी कि उसकी हड्डी नमूदार हो जाएगी, यानी बार बार स्क्रैच कर करके स्किन एकदम हमारी छिल जाती है ना, लेकिन वो तो इतना खुजाएंगे कि हड्डी निकल आएगी। तो उसको कहा जाएगा ये इस वजह से है कि जो तू मोमिनों को तकलीफ देता था, मोमिनों को तकलीफ देना इतना बड़ा सख्त अजाब का बायस बनेगा इंसान के लिए। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोचे तकलीफ देना क्या होगा फिर, अगर आम मोमिन को किसी को तकलीफ देना भी ऐसा है, और किसी के ऊपर इल्जाम लगा देना, किसी ने कुछ कहा ना हो उसके ऊपर इल्जाम लगा देना अपने नंबर बनाने के लिए या अपने आप को मजलूम जाहिर करने के लिए दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, उसने तो ऐसा किया था उसने ताकि लोग मेरी हमदर्दी करें और उसको बुरा भला कहें, ताकि लोग मेरे हक में हो जाएं, ताकि लोग मुझे अच्छा कहें और मुझे सोचेंगे हाय मैं कितनी बेचारी हूं इसलिए मैं दूसरों पर इल्जाम लगाऊं। तो ये फिक्र करनी चाहिए किसी के ऊपर भी इल्जाम लगाने से पहले कि ये अंजाम है उसका, और कहां कि नबी को अजियत देना, उनके ऊपर कोई इल्जाम तराशियां करना जैसे इन लोगों ने मूसा अलैहि सलाम पे की, उनके बारे में कोई ऐसी बात कह देना। तो तुम मत ऐसा करना, ये हुक्म है ईमान वालों को, तुम मत इस तरह से हो जाना। अगर हमें अपने माँ बाप के लिए गैरत आती है हमारी माँ के ऊपर कोई बात करे, हमारे बाप पे कोई बात करे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो और भी गैरत आनी चाहिए कि ऐसी हम बातों को ना सुने ना उनको एंटरटेन करें, बल्कि उल्टा ऐसे लोगों को कहा जाए कि आप इस चीज के बारे में जाने, इल्म लें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के अंदर इस तरह की कोई बात नहीं कही जा सकती। وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا, اور وہ تو اللہ کے نزدیک باعزت تھے. وجیہ نام بھی رکھا جاتا ہے, وجیہ بھی نام یعنی مؤنث کے لیے رکھا جاتا ہے. تو وجیہ کیا, یہ لفظ کس سے؟ وجہ سے. وجہ چہرے کو کہتے ہیں نا, اور چہرہ انسان کے جسم میں سب سے بلند عضو ہے اور عزت والا عضو ہے نا, اس کی یعنی انسان کی عزت اس کا چہرہ ہے. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہے کہ یعنی وجیہ سے مطلب ہے قدر و منزلت والا, جس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہو, جس کی تعریف ہو, جو شرف کے قابل ہو, جو نیکی میں معروف ہو, جو مقبول ہو, یہ جو مستجاب الدعوات ہو یعنی دعائیں جس کی قبول ہوتی ہیں. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے صفت بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ وجیہ ہیں, تم کیا ان کی باتیں کرتے ہو اور ان کے اوپر ایسے عیب لگاتے ہو. پیغمبر جو ہوتے ہیں اخلاق میں بھی سب سے بلند ہوتے ہیں, کردار میں بھی سب سے بلند ہوتے ہیں, اپنے ظاہر اور باطن دونوں میں بے عیب ہوتے ہیں. یعنی ان کے اندر جسمانی کوئی عیب نہیں ہوتے کہ ان کو یہ بیماری ہے یا یہ ہے, اس طرح کی چیز پیغمبروں میں نہیں ہوتی. تو وہ وجیہ ہیں. تو اب دیکھیں وجیہ سے کتنی ساری باتیں پتہ چل گئیں کہ وہ کیسے تھے, کتنے قدر و منزلت والے اللہ کے ہاں, کتنے معزز اللہ کے ہاں, اور ان کی کوئی بات رد نہیں ہوتی, اللہ کوئی بات ان کی ٹالتا نہیں, اس کو وجیہ کہتے ہیں نا, کہ وہ اللہ کے نزدیک وجیہ تھے, یعنی ان کی کوئی بات اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا, اتنے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہیں, اور تم ان کے اوپر اس طرح کے الزام لگا رہے ہو.